उसमें लगी हुई थी, लेकिन अभी अब आप लोगों की फरमाइश है कि कुछ सुनाएं, तो हम सहज पुरुषार्थ कैसे करें, क्योंकि हम बहुत लास्ट आए हैं, हमको अब लास्ट सो फास्ट जाना है। हमको इतना समय तो मिलेगा नहीं जो दादियों को मिला, बड़े भाई बहनों को मिला, लेकिन हमको अपने अंदर सर्वगुण और सर्व शक्तियों को लाना है, यही हमारा पुरुषार्थ है और हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि पूरे 84 जन्म हमारे साथ क्या चलने वाले हैं, ये हमारे दिव्य गुण और दिव्य शक्तियाँ ही चलने वाली है। इन दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों के आधार पर ही हमारे संस्कार बनेंगे, ठीक है ना। तो ये जो गुण और शक्तियाँ हैं, यही हमको जीवन में सफलता दिलाएंगी। क्योंकि मैंने उस दिन भी क्लास कराया था, उसमें मैंने कहा था कि सतयुग और त्रेता की तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो सब बुद्धू की तरह रहेंगे और वहाँ कोई विकार ही नहीं है, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला ही नहीं है, तो वहाँ तो अमीर रहे गरीब रहे उसका कोई प्रश्न ही नहीं है, सब सुखी ही सुखी हैं। लेकिन हमको सुख की, शांति की, शक्तियों की, गुणों की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब द्वापर आएगा। सही बात है ना, क्योंकि द्वापर में ही जो है ये अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े प्रारंभ होंगे, तो उस समय हमको क्या काम आएगा। यदि हमारे अंदर हिम्मत होगी, हमारे अंदर विल पावर होगी, हमारे अंदर दृढ़ता होगी, है ना, हमारे अंदर नम्रता होगी, हमारे अंदर एक धीरज का गुण होगा, तो हम उन परिस्थितियों को पार कर सकेंगे और वहाँ पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे हर कर्म में, है ना। कर्म करने के लिए भी तो चाहिए ना, हमारे कर्म पाप कर्म क्यों बने, कि हम अपने गुणों को खो चुके, है ना, किसी न किसी दुर्गुण के कारण हमारे पाप कर्म बने। तो इसीलिए जो है कि वर्तमान समय में हमको इसी बात पर ज़्यादा फोकस करना है। अब जैसे बाबा कहते हैं, आज कहा बाबा ने कि तुम बच्चों को बिंदु बन करके बिंदु बाप को याद करना है। अब इस छोटी सी बिंदु बात के लिए जो बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, वे साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर होंगे, वकील होंगे, डॉक्टर होंगे, या अध्यात्म के भक्ति मार्ग के बहुत कुछ पढ़े हुए लिखे लोग होंगे, तो वो क्या कर देते हैं, इस बात को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। समझ गए ना, बिंदु बनने का मतलब क्या है। बिंदु का मतलब ये नहीं है कि ये कोई तुम शरीर भूल जाएंगे कि या एकदम कहीं खो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिंदु का मतलब है, बिंदु के अंदर में है 7 गुण। कौन से, सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, पवित्रता है, ज्ञान है और शक्ति है। जब ये 7 गुण हमारे अंदर होते हैं और सर्वशक्तियाँ होती है, तो उस समय हम क्या है, बिंदु रूप में ही स्थित हैं, आत्मिक स्थिति में ही स्थित हैं। जब हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत के संकल्प आते हैं, हमारे मन में अशुभ भावना आती है, दूसरों के प्रति बैर की भावना आती है, बदले की भावना आती है, या किसी भी विकार की भावना आती है, तो हम देह अभिमान में होते हैं। नहीं तो हम, यदि हमारे मन में सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम की भावना है ना, और सबके प्रति सहयोग की भावना है, अपकारी पर उपकार की भावना है, तो हम बिल्कुल देही अभिमानी हैं, ठीक है। और उससे बढ़कर थोड़ा, जब हम देही अभिमानी होंगे और कोई विकार का भाव नहीं होगा, तो क्या होगा, हम एक ही संकल्प में एकाग्र हो सकेंगे। हमने संकल्प किया कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, और उस हम सुख में खो जाएंगे, उसकी बहुत अच्छी अनुभूति हम करने लगेंगे, तो यही बीज रूप है। इससे और थोड़ा गहरा जाएंगे ना, एक ही संकल्प पर एकाग्र होना ही बिंदु रूप या बीज रूप स्थिति है, और कोई नहीं है। पहले भक्ति मार्ग में भी लोग क्या करते थे कि छोटी बात को बड़ा बनाने के लिए, उसको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, लोगों को डराने के लिए कहो, या कि ये चीज बहुत भारी है ये बताने के लिए, वो बोलते थे तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। भाई अंदर कहाँ जाओ, सुनाओगे ना आपने भक्ति मार्ग में। और बाबा ने सीधा आकर के बता दिया, अंदर जाने का मतलब क्या है, कि तुम एक चेतन ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हो, तो सदैव अपनी आत्मिक स्मृति में रहो, ठीक है ना। इस आत्मिक स्मृति में रहना ही अपने अंदर जाना है। अपने अंदर जाना माना अपने गुणों को देखना, अपने अंदर कोई कमी तो नहीं है उसको देखना, यदि कमी है तो उसके ऊपर चिंतन करके उसको बाहर निकालना, यही अंतर्मुखी होना और अंदर जाना है। सही बात है ना। देखो कभी हम मुरली पढ़ते हैं, हमारा मन कहीं नहीं लगता है, मन बहुत बेचैन रहता है, मन बहुत अशांत रहता है, लेकिन यदि जब हम मुरली पढ़ते हैं तो मुरली पढ़ते 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 हमारा मन एकाग्र हो जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है ना, दूसरी बातें भूल जाती है। यदि हम कोई बाबा के अच्छे गाने सुनते हैं तो गाने सुनते सुनते हमारा मन शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। यही अंदर जाना है, यही अंतर्मुख होना है, यही आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। और यदि जब हम एक ही संकल्प पर एकाग्र हो जाते हैं तो हम उस बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाते हैं। और बड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात है ही नहीं। आपके मन में किसी भी विकार का प्रभाव नहीं है तो आप बिल्कुल आत्म अभिमानी स्थिति में हैं, स्थित हैं। और यही फरिश्ता स्थिति है। फरिश्ता स्थिति का मतलब ये नहीं है कि माना कोई हम ये शरीर से निकल करके चले जाएंगे या कहीं आकाश में उड़ते रहेंगे, वो फरिश्ता स्थिति है, नहीं। जब भी हम योग में बैठते हैं और हम बिल्कुल अशरीरी हो जाते हैं, अशरीरी का मतलब क्या होता है कि इस देह का आकर्षण खत्म हो जाता है, आपको ऐसा लगेगा कि बस बिल्कुल अब मैं शांत में ही बैठा रहूं, है ना, को बहुत ज़्यादा किसी के आवाज़ में ना आऊं, बहुत ज़्यादा किसी से बात ना करूं। जब ये स्थिति होती है और अपनी आत्मिक स्थिति होती है, यही फरिश्ता स्थिति है। इसलिए ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता कहा जाता है, है ना। तो हमारी स्थिति जब ऊपर नीचे होती है तो हमारी स्थिति कभी फरिश्ता स्थिति होती, कभी देह अभिमान की स्थिति हो जाती है। अभी जैसे बाबा ने कहा कि तुम अपने को बुद्धि में माना समाओ, दिल, आज की मुरली में था ना दिल की बात, कि दिल ये तो शरीर का है, दिल जो हार्ट है, वो हार्ट निकल जाता है, निकाल भी देते हैं ना उसको, है ना। तो हम भगवान को कहाँ बसाना है, बुद्धि में, क्योंकि याद कहाँ से करते हैं, मन और बुद्धि दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, मन संकल्प करता है और बुद्धि उसको देखती है, है ना। जैसे अभी हमने संकल्प किया कि परम धाम, तो मन में संकल्प उत्पन्न हुआ, लेकिन देखने का यंत्र क्या है, बुद्धि है ना। मैं दिल से याद करता हूं तो दिल कहां पर, जहां हमारी बुद्धि लग जाती है ना वहां हमारा मन एकाग्र हो जाता है। तो जब हम कहते हैं कि मैं आपको बहुत दिल से याद कर रहा था, दिल से याद कर रहा था ना, पूरी बुद्धि आप पर ही एकाग्र थी मेरी, आपके प्यार में ही एकाग्र थी। तो ऐसे ही जब हम पूरी बुद्धि को मन में हम संकल्प करते हैं कि बाबा प्यार का सागर है और हम बाबा से प्यार करते हैं, लेकिन जब हम उस बुद्धि को बाबा पर पूरी एकाग्र कर देते हैं और बस उसके ही लव में लीन हो जाते हैं, तो ये है कि हमने बाबा को पूरा दिल दे दिया है, बुद्धि हमने बाबा को समर्पित कर दी, माना हमने पूरा दिल दे दिया, ठीक है ना। अब इसके लिए जो साधु संत महात्मा जो पढ़े बड़े माना बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग होंगे, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएंगे उसमें, लेकिन है कुछ भी नहीं, यही सत्य है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी दादियां थी, दादा थे, 108 रत्न तो बन ही चुके ना, तो उनमें से कौन से ऐसे थे जिन्होंने भाई सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा था या माना और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था, किसी ने नहीं पढ़ा था। जो बाबा ने बोला उसको बिल्कुल स्वीकार किए और उसके ऊपर पुरुषार्थ किए और वो संपूर्ण बन गए। और इतनी 700 करोड़ आत्माओं में से वही तो अष्टरत्न विजयी रत्न बने हैं ना, है क्या नहीं। तो बाबा ने क्या दिया, प्यार दिया और ज्ञान दिया, उसका मनन चिंतन में सेवा में बुद्धि को लगाए रखे। अभी जो हमने आपको बात बताया कि हम लास्ट में आए हैं, हमको अभी फास्ट जाना है, तो कैसे जाएंगे, तो क्या होता है कि बुद्धि में हमेशा व्यर्थ चलते रहता है, है ना, क्योंकि बुद्धि में मन में हमेशा संकल्प चलते हैं और हमारा पुरुषार्थ ही है केवल अपने संकल्पों को श्रेष्ठ, शक्तिशाली और पवित्र बनाना, अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र बनाना। ये दो पुरुषार्थ हमने कर लिया तो सब कुछ पुरुषार्थ हो जाएगा। और कोई बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत हठ करने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ यदि हम सहज रीति से करते जाएंगे, देखो दादियों ने क्या हुआ, वो बाबा का ज्ञान सुनते थे, सुनाते थे, उसी में वो मनोरंजन का अनुभव करते थे। तो इसलिए बाबा ने याद और सेवा दी है। और जब हम याद करते हैं बाबा को या हम जो ज्ञान को सुनते हैं, तो हम प्रैक्टिकल प्रूफ, हमारा जो प्रैक्टिकल जो पेपर है वो सेवा के समय में होता है साथ साथ में, क्योंकि जब हम सेवा में जाते हैं तो वहाँ पर भाव स्वभाव का टकराव होता है, और वहाँ पर हम अपने ज्ञान को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल पेपर होता है। इसलिए मेरा खुद का अनुभव ये हमेशा का कि जो केवल व्यक्ति योग 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 ही करता है, उसके अंदर उतनी ज़्यादा धारणाएँ नहीं आ सकती जितना जो योग भी करता है, सेवा भी करता है, सब चीज़ का बैलेंस रखता है, उसके अंदर धारणाएँ ज़्यादा होगी। केवल ज्ञान सुनाते हैं उनके उनके पास उतनी धारणा नहीं होती। बाबा ने आज भी कहा कि ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत सुना लेते हैं लेकिन याद में नहीं रहते हैं, क्योंकि याद से ही धारणा आएगी, बिना याद के धारणा नहीं आएगी। क्योंकि देखो स्कूलों में भी नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, पढ़ाते हैं ना, लेकिन बच्चों के अंदर क्यों नहीं आती वो धारणा? क्योंकि वो परमात्मा को याद नहीं करते, वो अपने मन को पवित्र नहीं बनाते, अपने अन्न को पवित्र नहीं बनाते, पवित्र अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए उनके अंदर धारणा नहीं आती। तो यदि हमको धारणा रूप बनना है, धारणा मूर्त बनना है, तो हमारा ये प्रैक्टिकल पेपर बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कोई साइंस पढ़ते हैं तो साइंस पढ़ने वाले भी क्या करते हैं, पहला थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के बाद में वो हर सप्ताह में उनका प्रैक्टिकल पेपर होता है, प्रैक्टिकल करते हैं वो प्रयोगशाला में जा करके। हमने भी किए हैं केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, है ना, मेंढक काटने का वो सब सिखाते थे हमको, बहुत मेंढक काटे हैं हमने पढ़ते थे तो प्रैक्टिकल पे, वो बाटनी में वो फूलों का, इसका पेड़ का, पौधों का, बहुत सारे प्रैक्टिकल पेपर होते थे। केमिस्ट्री में भी होते थे, है ना, केमिस्ट्री हमने पढ़ा, उसमें सारा माना वो गैस बनाना वो करना सब बहुत कुछ, तो प्रैक्टिकल होते थे, हर सप्ताह करने होते थे। तो ऐसा ही हमारा जो प्रैक्टिकल पेपर जो है वो सेवा के क्षेत्र में होता है। सुबह हम जो मुरली पढ़ के आते हैं फिर हम सेवा में जाते हैं, तो सेवा में वहाँ पर हमको किसी भी प्रकार का मान का, अपमान का, असुविधा का, कोई भी ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है, तो उस समय में हम इस ज्ञान को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, है ना, उसमें हम चिड़चिड़े तो नहीं होते, गुस्सा में तो नहीं, चाहे आ भी गए, मान लो गुस्सा आ गया, मान लो चिड़चिड़े पन में आ गए, मान लो हम मायूस हो गए, लेकिन हमको तुरंत ज्ञान याद आता है या नहीं, हम उसको तुरंत परिवर्तन करते हैं या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है। तो जब हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तभी हम निरंतर योगी बन सकेंगे और तभी हम लास्ट सो फास्ट जा सकेंगे। तो लास्ट सो फास्ट जाने के लिए हमको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। यदि हमने इन बातों पर ध्यान रखे और अपने आप को इतना बिजी कर लिए, व्यस्त कर लिए, तो क्या है कि और कोई चीज़ के आने की मार्जिन नहीं होती। और हमको कभी भी क्या है कि लोगों को जब ज्ञान का नशा चढ़ता है तो वो क्या होंगे कि बिल्कुल योग योग ही करते रहेंगे, और उसमें क्या हो जाएंगे, उनके मुख की, चेहरे की पूरी रौनक खत्म हो जाएगी, है ना, जैसे निराश उदास जैसे उनके चेहरे पर होगा। नहीं, बाबा ने क्या सिखाया, रमणीकता भी सिखाया, थोड़ा हंसो भी, थोड़ा बहलो भी। ज्ञान की कितनी सारी बातें हैं जिसमें हम रमणीकता कर सकते हैं, एक दूसरे से हंस सकते हैं। अच्छा, आप कुछ भी ना कीजिए, आप चलते हैं, आपके सामने कोई भी आ गया, अजनबी भी आ जाए, आप देखो केवल उनको ओम शांति करो मुस्कुरा के, आप देखो उनको कितनी खुशी हो जाएगी, और वो खुशी वापस लौट करके आपके पास आएगी और आपका दिल खुशी से गदगद हो जाएगा। तो हम लोग क्या है कि हम सोचते हैं नहीं, हमको तो केवल योग ही करना है, योग ही करना है, तो बिल्कुल सबसे कट हो जाते हैं, तो इसीलिए हमारे अंदर वो गुण नहीं आते, है ना। तो ये सब चीज़ें लाने के लिए हमारा, इसलिए ये ज्ञान जो है ऐसा हट करने वाला ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, आप सभी दादियों को देखो, हम बड़े भाइयों को देखते हैं, किसी ने भी ऐसा हट करके, और हाँ उनको समय मिलता है तो वो बैठते हैं, लेकिन सभी का ये अनुभव है कि हर कर्म करते हुए योग युक्त अवस्था की अनुभूति है ना। तो उससे जो है बहुत अच्छी अच्छी धारणाएं आती है, बहुत अच्छे अच्छे गुण आते हैं, और फिर हम जो है लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब हमारे ऊपर विघ्न आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि ग्रहाचारी बैठ जाती है। अब ये ग्रहाचारी क्यों बैठती है? क्योंकि जो भविष्य वक्ता हैं वो लोग भी क्या है कि ग्रह के आधार पर हमारा भविष्य बताते हैं किसी का भी, भाई ये ऐसे है ऐसे है। अभी चाहे हम बीके भी बन गए हैं, बाबा ने बोला भी है कि भाई अभी तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, लेकिन फिर भी क्या होता है, जरूर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ जाता है ना, प्रभाव पड़ता है। स्थिति हमारी आज बहुत अच्छी होगी, दो दिन चार दिन के बाद में स्थिति डाउन भी हो जाती है। तो ये क्यों होता है कि हमने जो पूर्व जन्म में जो अनेक कर्म किए हैं, तो उसके कारण हमारे उस कर्म का प्रभाव अभी हमारी स्थिति पर पड़ जाता है ना। तो जैसे गीता में कहते हैं ना कि हर व्यक्ति जो है यहाँ पर वो अपने कर्म के प्रभाव से प्रभावित होकर के कर्म कर रहा है, जिसने पहले जो कर्म किया है उसके आधार पर। क्योंकि चाहे हम जान करके करें कर्म, चाहे हम न चाह करके भी भूल में भी कोई कर्म करें, उस हर कर्म का परिणाम हमें मिलता ही है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे दिखाते कि एक पेड़ के ऊपर में एक पक्षी था, और भाई नीचे में उधर शिवलिंग था, और वो उधर से फूल तोड़ रहा था, और वो फूल गिरते जा रहे थे। ऊपर वो पक्षी फूल तोड़ रहा था, फूल के पेड़ पर बैठा था, और वो फूल गिरते जा रहे थे, और वो शिवलिंग जो है शिव जी प्रसन्न हो गए और वो उनको वरदान दे दिया, ठीक है ना। अच्छा दिखा दे जो राजा दशरथ है, राजा दशरथ वो तो शिकार करने गए थे, और उन्होंने समझा कि कोई और है, और वो जो था कौन, श्रवण, श्रवण बालक, और वो पानी भर रहा था, और उसकी आवाज़ आई और उसने बाण मारा और सीधा श्रवण को लग गया। तो वो तो उसका भांजा था शायद ना, राजा दशरथ का श्रवण, हाँ शायद ऐसा ही, मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन हाँ है कुछ ऐसा। तो उन्होंने जो है वो बाण मारा और उनको लग गया, तो उनकी मृत्यु हो गई। और देखो उसका परिणाम क्या हुआ कि राजा दशरथ को भी हाय हाय करते हुए अपने प्राण त्यागने पड़े, और पुत्र मोह में, माना उनके पुत्र को वनवास हुआ और उसके मोह में ही उन्होंने हाय हाय करके प्राण त्यागे। तो ये कर्म उन्होंने तो जानबूझ के नहीं किया था ना। तो इसीलिए हमारे द्वारा जो जाने अनजाने में हमारे द्वारा कर्म हुए हैं, तो उन कर्म का प्रभाव है हमारे आत्मा के ऊपर, और उसके वशीभूत होकर ही कर्म करते हैं, मजबूर होते हैं। कोई चाहता नहीं कि मैं गुस्सा करूं, चाहता है कोई गुस्सा करे? नहीं चाहते। लेकिन क्या होता है, गुस्सा कहाँ से आया, कब आ गया और मुंह से निकल गया पता ही नहीं चलता है। फिर उसके बाद में लगता है यार मैंने तो गड़बड़ कर दिया, मैंने गलत किया, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। लेकिन क्या है, वो कर्म का हिसाब किताब था, वो बोलना ही था आपको, इसलिए उसमें कोई भी ना आप कुछ कर सकते हैं, ना ड्रामा कर सकता है, ना भगवान कुछ कर सकता है। तो इसीलिए जो है कि ऐसी परिस्थितियों को पार करने के लिए जब हम इस निरंतर योग में और निरंतर सेवा में रहेंगे, निरंतर अपने मन बुद्धि को व्यस्त रखेंगे, तो हमारी स्थिति इतनी शक्तिशाली होगी, बहुत शक्तिशाली होगी। और क्या होता है कि जब हम इसमें व्यस्त हो जाते हैं और हमारे मन बुद्धि का जो व्यर्थ समाप्त हो जाता है, तो उस व्यर्थ के समाप्त होने से हमारे संकल्पों में शक्ति आ जाती है, और फिर हमें अनुभूतियां होती है, या आप जो संकल्प करेंगे तो उन संकल्प में सिद्धि भी आएगी। जब बहुत ज़्यादा व्यर्थ संकल्प होते हैं तो वो व्यर्थ संकल्प हमारी शक्तियों को छीण करते हैं, संकल्पों की शक्तियों को छीण कर देते हैं, इसलिए हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, है ना। कई लोग क्या बोलते हैं, हाँ भाई रात को सोते समय ये सोच करके सो, ठीक है, अच्छा सुबह उठते ही ये करो कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। लेकिन जब तक आपके संकल्पों में शक्ति नहीं होगी, आपने सवेरे तो सोच लिया लेकिन आप व्यर्थ में रहते हैं, व्यर्थ संकल्प करते हैं, व्यर्थ चिंतन करते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी कैसे। और दूसरी बात ये भी है, केवल ये एक बात हमने केवल सोच लिया कि भाई हाँ मुझे सफलता मूर्त आत्मा हूँ मैं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और दिन भर हम अलबेलेपन में है, न हम कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं, हाँ न कुछ कर रहे हैं, तो तो हम कैसे सफल हो सकते हैं? सफल होने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। एक व्यापारी होता है, उस व्यापारी को अपनी भोजन भी उनको छोड़ना पड़ता है, अपनी नींद भी छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के वो कंपटीशन का सामना कर पाते हैं और फिर जाकर के उनको सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो सवेरे हमने संकल्प कर लिया मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ और जाकर के दिन भर हम किधर भी जाएंगे बैठेंगे काम नहीं करेंगे और हमको सफलता मिल जाएगी। नहीं, पूरे मेहनत से, पूरी लगन से हमारे जो कर्म है, जो भी कार्य क्षेत्र है, उस पर भी हमको पूरे ईमानदारी से, मेहनत से करना पड़ेगा, है ना? तो आपको तो सवाल ही नहीं उठता। अब जो लोग क्या है, कुछ मेहनत करते नहीं है, कुछ नहीं, और चाहते हैं बस हमको सहज रीति से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाए, तो ये तो संभव नहीं है ना। संभव है क्या, बताइए भाई? आप अभी खाना बनाते हैं तो भाई आपको रोटी बेलना पड़ेगा, उसको सेकना पड़ेगा, है ना, सब्जी काटना पड़ेगा, धोना भी पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। 1 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, 2 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद में भोजन बनेगा, फिर आप भोजन खा सकेंगे। हम कहेंगे कि चलो मैं तो अभी सफलता मूर्त आत्मा हूँ और मैं सब्जी काटू ही नहीं, रोटी बनाऊ नहीं, और अब बैठ जाऊँ थाली लेके, हाँ अभी तो मैं सफलता मूर्त हूँ तो मेरे थाली में आ जाएगा सारा भोजन। तो आ जाएगा क्या? नहीं। लेकिन ये संकल्प करने से ये है कि हाँ हमारे संकल्पों में शक्ति आ जाएगी, लेकिन हमको उसका पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा और पूरे दिन भर भी हमको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और संकल्पों में क्यों कमजोरी आई है, क्यों व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उसका कारण यह है कि हम जो 63 जन्मों तक विकार में रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तीनों के कारण हमारे संकल्पों की और हमारे आत्मा की शक्ति क्षीण हुई है, और वो शक्ति क्षीण होने के कारण हमारे संकल्पों की शक्ति कम हो गई, इसके लिए वो संकल्प में जो सिद्धि थी वो समाप्त हो गई। यदि हमको अपने संकल्पों में सिद्धि लाना है तो हमको बार बार एक ही संकल्प पर एकाग्र होना पड़ेगा, है ना, बार बार एक ही संकल्प का अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो उस एक ही संकल्प का इतना हम अभ्यास करें कि उसमें इतनी शक्ति आ जाए, तो जो संकल्प हम करें वही होगा। अभी जैसे देखो सूरज भाई जी हैं भाई, उन्होंने 50 साल तक इतना तपस्या की है, इतनी उन स्वमान के ऊपर में मेहनत की है, इसलिए वो क्या है, जिसको भी बोलेंगे ना हाँ ये मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान का आप अभ्यास कर लो, तो वो अभ्यास करेंगे और उनको सहज रीति से उसमें सफलता मिल जाएगी। भले ही उनके बुद्धि में व्यर्थ भी चल रहा है, पर वो कहाँ, वो सिद्धि किस किन की काम कर रही है, वो सूरज भाई के संकल्पों की सिद्धि काम कर रही है, न कि वो व्यक्ति की। उस व्यक्ति में तो अभी भी व्यर्थ चल रहा होगा, लेकिन इन्होंने तपस्या की है। जैसे कोई भी पहले के जमाने में क्या होते थे, गुरु लोग होते थे ना, बोलते जा तथास्तु, भाई तेरा ये हो जाएगा, माना उनको वरदान मिल गया तो उनको वो सिद्धि हो गई, उनके कार्य में सफलता हुई। पहले क्या होते थे, वो किसी को बच्चा नहीं होता था, किसी को शादी नहीं होती थी, किसी का धंधा बिजनेस नहीं चलता था, किसी के ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस होता था, तो साधु संत महात्मा ऋषि मुनि गुरु के पास लोग जाते थे ना, और वो लोग क्या करते हैं, या तो वो ऐसी राख उठा करके दे देते हैं या कोई फल उठा करके दे देते हैं, जा तेरा काम हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, कि उनके संकल्पों में शक्ति है, उसके कारण वो काम हो रहा है। तो ऐसे ही यदि हम अपने संकल्पों में इतनी एकाग्रता लाएं और इतनी एकाग्रता से हम यानी अभ्यास करने लगें और अपने बुद्धि के व्यर्थ को हम समाप्त कर दें और अपने अंदर देवी गुण ले आएं, और हम जो पवित्रता है कि मन सा वाचा कर्मणा की पवित्रता को यदि हम पक्की कर लें, तब फिर हमारे संकल्पों में वो सिद्धि आएगी। तो इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए और ऐसे सहज पुरुषार्थ करने के लिए और लास्ट सो फास्ट जाने के लिए हमको ऐसे बिल्कुल शॉर्ट एंड स्विफ्ट पुरुषार्थ करना चाहिए। और कभी घबराना नहीं चाहिए कि भाई हम तो ये घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, हम माता हैं, बहने हैं, ये हैं, हम कैसे कर सकता है। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आप देखो जो भोली दादी थी वो तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा, लेकिन देखो बाबा मुरली में उनको याद करते हैं। जान की दादी जो है वो कोई इतनी ज़्यादा बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन देखो भाई अष्टरतन में उन्होंने अपना स्थान बुक कराया, कराया नहीं कराया है, उन्होंने तो कोई हठ योग नहीं किया ना। कैसे देखो उनकी हिस्ट्री है भाई, कहाँ वहाँ पर गए थे पूना में, तो उनको प्लेटफार्म पे भी सोना पड़ा था, वहाँ पूना में रहे तो एक 10x10 के रूम में ही पूरा उन्होंने गीता पाठशाला भी चलाया, वहीं उनका किचन भी, वहीं उनका बेड भी सब, कैसी तपस्या करके, कोई थोड़ी वो ऐसे ही माना केवल तपस्या ही करते रहे, लेकिन ज्ञान योग सब साथ में चलता रहा उनका, है ना, सारा उन्हें अपने श्वासों श्वास सब कुछ सफल किया, इसलिए उनको उनके संकल्पों में भी शक्ति आ गई। तो अभी ये हमको वक्त है, ये जो कोरोना है ये हमसे ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कराने के लिए आया है, तो हम अपने मन का अलबेलापन छोड़ करके, सब दूसरों को देखना छोड़ करके, केवल हम अपने इसमें मस्त हो जाएं, ज्ञान में, योग में, सेवा में, तो बहुत सहज रीति से जो है आपके अंदर बहुत, देखो चाहे हम कितना भी कुछ बोल लें कि हमको ये त्याग कर दें वो त्याग कर दें, लेकिन मन को खुशी चाहिए। एक बात और मैं छोटी सी बताता हूँ, जैसे संतुष्टता के लिए कहते हैं भाई संतुष्ट मणि बनो, संतुष्ट मणि बनो, लेकिन बाबा ने उसमें ही कहा है कि जो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा है वही संतुष्ट मणि हो सकती है। अभी दादियाँ संतुष्ट मणि बनी, क्यों बनी, क्योंकि उन्होंने 60 साल तक इतनी त्याग किया, तपस्या किया, सेवा किया, उन्होंने कितनी जीवन में उतार चढ़ाव देखे, वो सब करते 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 उनके मन में संतुष्टता आई, समझ गए ना। या तो हम अपने मन को मार करके थोड़े दिन संतुष्ट रह जाएंगे, लेकिन वो क्या होता है, अंदर दबा हुआ रहता है, फिर बाद में इच्छाएं जागृत हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि देखो पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन भी आता था, क्यों आता था, क्योंकि मेरे मन में बहुत इच्छाएं थी। इच्छा क्या थी, ये नहीं कि कोई खाने की इच्छा थी, पीने की इच्छा थी, कि गाड़ी की बंगला की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत श्रेष्ठ कर्म करने की, बहुत पुण्य कर्म करने की, बड़े बड़े अच्छे भाषण करने की, बड़े बड़े अच्छे काम करने की, जिससे मैं बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूँ, ये मेरे मन में इच्छा थी। लेकिन मेरा ऐसा रहा कि बचपन से भी माना बहुत संघर्ष और वो करना पड़ा, तो यहाँ पर भी आया तो वही मुझे खाना खिलाने की सेवा मिली, तो हमेशा मुझे उसी में लगा रहना पड़ा, बहुत समय देना पड़ता था, लेकिन मैं चाहता था कि ये सेवा करके भी मैं दूसरी सेवा करूँ, और वो जब मेरी इच्छाएं बाधित होती थी तो मुझे चिड़चिड़ापन आता था और मुझे गुस्सा आता था। लेकिन अब जब मैं इतने सालों से ये सब सेवाएं करने लगा, मैंने गीत लिखे, कविताएं लिखे, गीतों की सीडियां बनाई, 20 CD हमने अपने गीतों की बनाई है, और आपने सुना होगा वो जैसे मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह, करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की, ज्ञान के चंदन से महकी जीवन की फुलवारी है, साजन मेरा हसीन मुसाफिर रहता है बड़ी दूर, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं ना, 20 CD के सारे गीत है, एक टेलीफिल्म हमने बनाया, एक रत्नों की बौछार नाम से बुक बनाए, और हमने तनाव के ऊपर कम से कम 100 कविताएँ लिखे, और उससे हमारा तनाव गायब हुआ, है ना, ये सब करते रहे। फिर देखो अभी ये वीडियो बना रहे हैं, है ना, रूहानी उड़ान सारा चैनल, आत्मिक उड़ान चैनल, रूहानी यात्रा चैनल, 3 चैनल है, उसमें सारा ये सब सेवाएं करते हैं। तो क्या हुआ कि इससे धीरे धीरे संतुष्टि आने लगी, फिर हमने लोगों को देखा, परखा, जाना, फिर वहाँ की कैसे इच्छाओं के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, हम तो हमने वो सब चीज़ को त्यागना, इच्छा दिल से छोड़ा वो सब, पर हमको प्राप्ति क्या हुई कि जब हमको सेवा में सफलता मिलते गई तो हमको अंदर तृप्ति होते गई, चाहे किसी से मान मिले न मिले, कोई प्रशंसा करे न करे, पर आपके पास में 1000 रुपये है तो आपका दिल थोड़ा रहेगा ना, मजबूत रहेगा ना, और आपके पास 1 भी रुपया नहीं रहे तो आपको खाली खाली लगेगा। वैसा क्या हुआ कि जब हमारी सेवाएं होने लगी, हमको दुआएं मिलने लगी, तो हमारा मन अंदर से अपने आप संतुष्ट होने लगा, तो हमारा चिड़चिड़ापन अपने आप कम हुआ, क्रोध कम हुआ, ये हमारा अनुभव है। तो इसलिए मन को दबा करके कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है, समझ गए ना। तो इस तरह से, और इसके लिए हमको कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने हमारे सामने विरोध आए, अवरोध आए, है ना, लेकिन हमने हिम्मत हारी नहीं और हम ये सेवा करते रहे, हमको सफलता मिलते गई, और इससे हमारे शरीर की बीमारी भी ठीक हुई। आज क्यों बीमार होते जा रहे हैं लोग ज़्यादातर, और बोलते हैं ज़्यादातर बीके क्यों बीमार होते, क्योंकि क्या है, देखो दुनिया की इच्छाएँ तो छोड़ दिए, अब यहाँ पर भी क्या होता है कि पूरी तरह से बांध करके, और बस केवल एक मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ही समा गए, और वहाँ पर यदि अनुभूतियाँ नहीं होती तो मन खुश नहीं होता, अतिंद्रिय सुख का अनुभव नहीं होता, अशरीरीपन का अनुभव नहीं होता। यदि हम अशरीरी अनुभव अशरीरीपन का हम यदि अनुभव करने लगे, अतिंद्रिय सुख का अनुभव हम करने लगे, तो हमारी कई बीमारियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। देखो इतने कोरोना काल में है ना, देखो हमको अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई साहब भी देखो बैठे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ भाई सुरेंद्र भाई जी, तो आप देखेंगे कि हमारा स्वास्थ्य थोड़ा माना ऐसा नाजुक है कि हम सादा पानी भी पीते हैं तो सर्दी हो जाती है, कुछ और भी पीते हैं थोड़ा भी खा लिए तो सर्दी हो जाती है। लेकिन देखो अभी हम ज्ञान योग में इतने मस्त रहते हैं तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है हमारे से। हष्ट पुष्ट लोग सब एक बार वहाँ से पार होकर के आ गए, लेकिन बाबा ने हमारी रक्षा की है क्योंकि हम अपने आप को खुश रखते हैं। हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, हमने इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिकल अभ्यास किया है, साइलेंस के ऊपर भी बहुत प्रैक्टिकल अभ्यास किया है। यदि कभी भी कोई तूफान आ जाते हैं, कोई परिस्थितियाँ आ जाती है, तो आप जो है अपने आप को इतना शांत कर लो और चुप रहो, थोड़ा वो समय को गुजरने दो और फिर देखो आप वो परिस्थितियाँ कैसे पार होती हैं, परिस्थितियाँ अपने आप चले जाएंगी। लेकिन उस परिस्थिति में हम बहुत जब हलचल में आ जाते हैं तो वो परिस्थितियाँ हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो हम आपको एक बात बताते हैं कि जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए, और जो कई लोग जो होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, वो रिलैक्सेशन कराते हैं है ना शरीर का, वो मेडिटेशन के लिए, भाई मेरा ये अंगूठा शांत हो रहा है, फिर मेरा ये घुटना शिथिल हो रहा है, ये पैर शिथिल हो रहा है, फिर ये पेट शिथिल हो रहा है, फिर वो शरीर के एक एक अंग को शिथिल कराने के लिए अभ्यास कराते हैं। लेकिन हमारा ये अनुभव है कि आप यदि एक्सरसाइज नहीं भी करेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे, मेरी गारंटी, क्योंकि हमारा शरीर साथ नहीं देता, हम तो एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते। जब स्वस्थ रहते हैं तो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर लेते हैं, नहीं तो हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं होती, इतना हमारा शरीर माना साथ नहीं देता है। आपको सच बात बता रहे, अमृत वेले का समय तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ही संकल्प करते हैं, मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ, मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ, मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ, और उस एक ही संकल्प में एक घंटा आधा घंटा जब भी हो, और जब भी हमको संदली पर बैठने का चांस मिलता है तो उस समय तो हमको बहुत ही पावरफुल योग की अनुभूति होती है, और पूरे अशरीरी पन का अनुभव होता है, हमारे शरीर की एक एक कोशिका चार्ज हो जाती है। और ये तरकीब आप अपनाइए कि मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ और मैं अपने शरीर की एक एक कोशिका को चार्ज कर रही हूँ, और आप देखिए आपका शरीर कितना एक्टिव हो जाता है, आपकी आत्मा कितनी एक्टिव हो जाती है, आप कितने एक्टिव हो जाएंगे, आपके मन का आलस्य भाग जाएगा, आपके अंदर इतनी स्फूर्ति आ जाएगी। बार बार अभ्यास कीजिए। और हम आपको बताते हैं कि बाबा का ज्ञान ही इतना रमणीक है, और इतना सारा ज्ञान है हमारे पास में, उसको ही रोज़ हम नए नए तरीके से करते जाएं तो बहुत रमणीकता आ सकती है। और क्या होता है कि एक ही एक अभ्यास को बार बार हम करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा, उसके अंदर शक्ति आएगी। आज हमने कर लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, और फिर बहुत सारे और अभ्यास में लग गए, और फिर 2-3 महीने के बाद में फिर मैं अभ्यास कर रहा हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो मेरे संकल्पों में शक्ति नहीं आएगी। तो जो एक अभ्यास को हम लेते हैं उसको थोड़े समय तक कंटिन्यू ही करना चाहिए। तो हमने कुछ अपने अभ्यास बना लिए जो हम दिन भर में उसको कई बार करते हैं, जैसे एक मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, दूसरा मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तीसरा मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, चौथा मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ, है ना, मैं मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता आत्मा हूँ, मैं अकाल तख्त नसीन आत्मा हूँ, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ, ऐसे ऐसे है ना। तो इस तरह से जब हम अभ्यास करेंगे तो हमको बहुत अच्छी अनुभूति होगी, हम अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बना सकते हैं और बहुत अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर सकते हैं, और हमको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बल एक भरोसा, बाबा के सहारे पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। किसी को प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे जब आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, स्वयं आपको भगवान पढ़ा रहे हैं, फिर और क्या चाहिए आपको, सही है या नहीं? तो अपने आप यानी सक्षम हमको बनना है, ठीक है ना, हमको कहाँ पर भी किधर भी हमको झांकना नहीं है, बाबा ने जो ज्ञान सुनाया है उसको आप खाली सुन लो, धारण कर लो, आप खुद अपने आप पैरों पर खड़े हो जाएंगे, इतने शक्तिशाली बलवान मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो एक मिनट याद करेंगे फिर।